श्री कामेश्वर महादेव की। ब्रजभूमि के रक्षक के रूप में शंकर भगवान चार जगह पर सेवा करते हैं, चार प्रमुख स्थान है, वैसे कई स्थानों पर शिव जी अपनी सेवा देते हैं, लेकिन ब्रज के जो चार कोने हैं उन चार कोनों में वो अपनी सेवा देते हैं। मथुरा में वो भूतेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस भूतेश्वर महादेव मथुरा में कंस ने उनकी पूजा की थी बड़ी मूर्खता से, ये मांगते हुए कि आप हमें शक्ति दो कि हम कृष्ण का वध कर सकें, क्योंकि उन्हें कृष्ण के आठवें पुत्र से भय था मृत्यु का, इसलिए उन्होंने भूतेश्वर की पूजा की। लेकिन शंकर महादेव स्वयं भगवान के परम भक्त हैं। इनका वर्णन ऐसे आता है, वैष्णवानां यथा शंभु, ये भगवान के परम वैष्णव भक्त हैं और ऐसी मूर्ख प्रार्थनाओं को वो प्रतिसाद देते नहीं है। तो ये सब इनकी पूजा करने के बावजूद भी जब इनका वध हो रहा था तो पार्वती जी पूछती हैं, ये तो आपके भक्त हैं, उन्होंने कहा कि जब भगवान की इच्छा होती है किसी को मारने की तो उसको कोई बचा नहीं सकता है, और जो उनको जिनको मारना चाहते हैं तो कोई बचा सकता नहीं है, और जिनको बचाना चाहते हैं उन्हें कोई नहीं मार सकता है। तो इस तरह से भूतेश्वर महादेव मथुरा में विराजमान है, वहीं पर गोकर्णेश्वर रंगेश्वर महादेव भी हैं। फिर गोवर्धन में शिवजी महाराज चक्रेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है, और इसकी कथा ऐसी है कि जब भगवान ने गिरिराज को उठाया था तो उस समय चक्र को उन्होंने आदेश दिया था कि आपको इस तरह से चलना है कि एक भी बूंद जल की जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए, जमीन पर गिरने के पहले ही उसको आपको चारों तरफ घूम घूम कर उसको बाष्प कर देना है। इसलिए जब गिरिराज की छतरी उन्होंने उठाई तब उसके बाजू से वो जल नहीं गिरा, गिरिराज जब उठाए थे तो गिरिराज उठाए हुए गिरिराज के चारों ओर घूमते घूमते चक्र ने सारे जल को जो मुसलधार वर्षा के समान बरस रहा था उस सबको उन्होंने बाष्प कर दिया, वेपराइज्ड ऑल द वाटर, और जहां पर जाके उन्हें भूमि पर छेद किया है उस जगह का नाम है चक्रेश्वर, जहां पर शिवजी महाराज विराजमान है। तो चक्रेश्वर महादेव की कथा ऐसी है कि सनातन गोस्वामी जो वृंदावन में उनका मदन मोहन जी का मंदिर है, जब मदन मोहन जी का मंदिर बन रहा था तो उस समय सनातन गोस्वामी जी गिरिराज गोवर्धन पर चक्रेश्वर महादेव के पास में निवास कर रहे थे, भजन कर रहे थे। तो उस समय शिवजी महाराज भक्तों को इतना प्रेम करते हैं कि सनातन गोस्वामी के संग से वो बहुत खुश थे, बहुत प्रसन्न थे, लेकिन उस समय बहुत मच्छर थे वहां पर, बहुत कीटक और मच्छर। तो सनातन गोस्वामी ने तय किया कि हम यहां से जाएंगे क्योंकि यहां पर भजन नहीं हो रहा है ठीक से, बहुत अवरोध आ रहा है उसके अंदर, व्यवधान आ रहा है। तो वो जब जाने का उन्होंने तय किया तो शिवजी महाराज बहुत अप्रसन्न हो गए, बहुत दुखी हो गए। तो उन्होंने उनको स्वप्न में बताया कि आप रुको, मैं उसका इलाज करता हूं, और शिवजी महाराज वहां से देवताओं के लोक में गए हैं और वहां पर जो कीटकों को नियंत्रण करते हैं उन देवता से संपर्क करते हैं, उनसे निवेदन देते हैं कि इस जगह से सब मच्छरों को कीटकों को हटाया जाए जब तक सनातन गोस्वामी जी यहां भजन कर रहे हैं। तो शंकर महादेव जी है ना, उनकी विनती से वो देवता जो है तो कीटकों को नियंत्रण करते हैं, वो सब कीटकों को वहां से हटा देते हैं, और फिर सनातन गोस्वामी जी हम आराम से भजन करते हैं और शिवजी महाराज उनका संग लेते रहते हैं। तो अनंत जनता जो है वो शिवजी महाराज के पास जाके बहुत सारी प्रार्थनाएं करते रहते हैं कि हमको धन दो, हमको अच्छा पति दो, अच्छा पत्नी दो, या हमको कला में निपुण करो, हमारी स्वयं नटराज है तो नृत्य कला वाले लोग उनको पूछते हैं, गायन वाले उनको पूछते हैं, सब संगीत वाले उनको पूछते हैं, और कई लोग ज्यादा करके धन दौलत पद अच्छा मान सम्मान चाहते हैं, उनकी पूजा करते हैं। लेकिन शिवजी जो है वो भगवान के परम भक्त हैं, इसलिए भगवान के द्वारा शक्ति प्राप्त तो उनको है आशीर्वाद देने की, वरदान देने की, और देते भी रहते हो, लेकिन उनको हृदय से तब आनंद होता है जब कोई भक्त तो उनके पास आके कृष्ण भक्ति की मांग करता है। क्योंकि शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, इन सबके अंदर वो शक्ति है कि वो हम सबको भगवान की शुद्ध भक्ति दे सकते हैं, हमारी शुद्ध भक्ति की बाधाओं को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए उनके पास बहुत सारे कामना लेकर बहुत लोग आते हैं और लाइन लगाकर अपना अर्जी रखते हैं उनके पास, वो पूरी भी करते हैं, लेकिन उनको प्रसन्नता नहीं होती उसके अंदर। आप सोच सकते हैं ना, अगर कोई व्यक्ति केवल निजी स्वार्थ के लिए आपके पास आता हो, आपकी पूजा करता हो, मन में उतनी कामना खुद के स्वार्थ के लिए है, अनंत जनता आपके पास दिन रात लाइन लगा खड़ी है और आपके पास कुछ मांग रही है खुद के लिए, तो आपको खुशी नहीं होगी, क्योंकि उसमें से कोई व्यक्ति आप पर प्रेम नहीं करता है, तो आपको उसमें आनंद नहीं आएगा। तो भगवान के भक्त जो है वो शिवजी पर भगवान के परम वैष्णव के रूप में बहुत प्रेम करते हैं और कोई कामना व्यक्त नहीं करते कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। वो केवल उनके पास आकर एक ही वस्तु मांगते हैं कि हमें भगवान के श्री चरणों की भक्ति प्राप्त हो जाए। और शिव जी बड़े ही कृपा से, बड़े ही आनंद से उनको ये वरदान दे देते हैं। कई ऐसे हमारे मंदिरों में भक्त हैं, मैं भी मिलकर हूँ उसके अंदर, जो पहले शिव जी के भक्त थे और शिव जी की कृपा से वो सब कृष्ण भक्ति में आए हैं। जब शिव जी से हम प्रार्थना करते हृदय से कि हमारे जीवन में हमारे लिए जो सर्वोच्च वस्तु है वो आप हमको दे दो, तो वो तुरंत कृष्ण भक्ति आपको दे देते। पहले हम परीक्षा में अच्छे मार्क आने चाहिए इसलिए प्रार्थना करते थे, हर सोमवार को अभिषेक किया करते थे। जब परीक्षा हुई, अच्छे मार्क भी आ गए, दूसरी परीक्षा बहुत दूर थी, तो हमने फिर बंद नहीं किया। बहुत अच्छा लग रहा था कि शिव जी महाराज की कृपा है, तो वी वर वेरी ग्रेटफुल टू लॉर्ड शिवा। तो मंडे को मंदिर में जाना, हम चालू रखे और अभिषेक भी चालू रखा, पूछना क्या है फिर, अभी दूसरी परीक्षा तो बहुत दूर है। तो हमने फिर उनको प्रार्थना किया कि आपको जो अच्छा लगे हमारे जीवन में वो कीजिए। तो कुछ ही महीने में हम हरे कृष्णा मंदिर में गए और भगवान का नाम उनको प्राप्त हुआ। ऐसे बहुत लोगों की अनुभव है शिवजी महाराज की कृपा के। तो यहाँ पर वो कामेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है, आपके सामने उनका दर्शन है बहुत सुंदर। और इस कामेश्वर महादेव की वृषभानु महाराज ने सेवा की थी। वृषभानु महाराज को भी बहुत देर तक संतान प्राप्ति नहीं हुई थी, तो संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पर आकर उन्होंने उनकी पूजा की। इसके ही फलस्वरूप वृषभानु महाराज और कीर्ति मैया को श्रीदामा, राधा रानी और अनंग मंजरी, ये तीन अपत्यों की प्राप्ति हुई है। अनंग मंजरी बलराम जी का अवतार है, श्रीदामा भगवान के परम सखा हैं और सबसे प्रिय सखा श्रीदामा जी हैं। और चौथे वृंदावन में वो गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। मैंने ये कहानी आपको बताई है पहले से ही, यहाँ पर भी काम्यवन में वो गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है, थोड़ी लीला अलग है यहाँ की। इस प्रकार से वृंदावन में शिवजी महाराज की और एक सुंदर कथा आती है कि आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, और आत्मदेव ब्राह्मण एक ऐसा अनोखा ब्राह्मण था, वो शिवजी का भक्त था, लेकिन उसके मन में शिवजी के पास मांगने के लिए कुछ भी नहीं था, मन में उसका कोई इच्छा नहीं था। वो शिवजी इस व्यक्तिवत्व से, इस व्यक्ति से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे और केवल अपने प्रेम की वजह से उनकी पूजा करते थे। तो शिवजी बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने स्वप्न में उनको दर्शन दिया, क्योंकि आप इतने निरपेक्ष हमारे लिए पूछते हो, हम आपको कुछ देना चाहते हैं। तो आत्मदेव कहते हैं कि हमने कभी आपसे कुछ लेने के विचार से भजन नहीं किया है, हम आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए हमने आपसे पूजा अर्चा पद्धति किया है। तो शिवजी कहते हैं नहीं नहीं, जब हम आते हैं तो हमारा दर्शन खाली जाता नहीं, हमें आपको कुछ ना कुछ देना है। तभी आत्मदेव ब्राह्मण शिव जी से बोलते हैं कि आपको जो सबसे प्रिय वस्तु है वो हमें आप दे दो। तो शिव जी बड़े प्रसन्न होकर नाचने लगते हैं, वो कहते हैं कि आपके घर के कुएं के अंदर आप अगले दिन प्रवेश कीजिए, तो आवाज जरा हो रहेगा, कम करो उसको। तो शिव जी के कहने अनुसार वो दूसरे दिन सुबह पे अपने कुएं में उतरते हैं स्नान करके। वो पुराने जमाने में बड़े लंबे लंबे कुआं हुआ करते थे, उसमें बहुत बड़े टनल्स हुआ करते थे, दाहिने हाथ के टनल में वो प्रवेश करते हैं तो उनको वहां पर राधा वल्लभ जी की मूर्ति प्राप्त होती है, जो सबसे हृदय प्रिय है शिवजी महाराज को। तो ये आत्मदेव ब्राह्मण को वो जो प्राप्त होता है राधा वल्लभ जी की मूर्ति, तो चिरथावल नाम के जगह पर उत्तर भारत में ये जगह है जहां पर प्रकट हुए थे। वहां पर कई पीढ़ियां आत्मदेव के ब्राह्मण के कई पीढ़ियों ने राधा वल्लभ जी की सेवा की है। उसके बाद में एक बड़ी सुंदर लीला के साथ में चिरथावल के जो उनके जो वंशज थे ब्राह्मण, उन्होंने फिर भगवान के बंसी के अवतार श्री हित हरिवंश महाराज इनको ये राधा वल्लभ की मूर्ति सौंप दी है। फिर राधा वल्लभ जी को उन्होंने मदन टेर नाम के जगह पर उनका भजन सेवन किया है, सेवा की है। वहां से वो आज जहां राधा वल्लभ जी का मंदिर है वहां पर उनको विराजमान किया गया है। इस तरह से हम देख सकते हैं, ऐसे कई उदाहरण है शास्त्र में कि जैसे हम देवताओं के पास जाते हैं, भगवान कहते हैं कि देवताओं के पास वो लोग जाते हैं जो काम वासना से रत रहते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तब वो देवताओं के पास पहुंचते हैं अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए। कामस्तैत्य ऋतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जब काम के द्वारा व्याकुल होकर जब उनकी दृष्टि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तब वो देवताओं के पास पहुंचते हैं। और आगे भी कहते हैं भगवान की उन देवताओं को भी उनकी कामनाओं की पूर्ति करने की शक्ति मैं ही देता हूं। इसलिए देवताओं के पास जाकर भौतिक इच्छाओं को प्रकट करना निषिद्ध माना गया है। इससे क्या होता है, जो प्राप्ति उनसे मिलती है वो प्राप्ति समय के साथ में नष्ट हो जाती है। उसका आनंद और सुख जो है उसकी शुरुआत है और उसका अंत है। तो ऐसे सुखों की प्राप्ति करना निषिद्ध माना गया है। और देवताओं की ऐसी प्रवृत्ति और ऐसी स्थिति है कि जो उनकी क्षमता में है और आप कुछ कर्म करते हो, कुछ विधि करते हो तो उसकी पूरी कर देते हैं, लेकिन आपके लिए अच्छा और क्या बुरा है उसका सोचना उनके हाथ में नहीं। जैसे माता के पास कोई बालक जाएगा बोलेगा मुझे 1 रुपया दे दो मुझे सिगरेट पीनी है, तो माता 1 रुपया नहीं देगी उसको, एक बड़ा तमाचा लगाएगी उसके ऊपर, क्योंकि माता बच्चे का हित चाहती है। इसलिए बच्चा जो मांगेगा उसको पूरी नहीं करता है, पूरी नहीं करती माता। लेकिन आप दुकानदार के पास जाओगे 1 रुपया दोगे तो आपको सिगरेट दे देगा, वो देखेगा नहीं बालक है छोटा है बड़ा है क्या है कन्या है, कुछ देखेगा नहीं, क्योंकि ये व्यवहार की बात है। तो देवताओं के सामने जाकर कुछ प्रकट करना इच्छा, उसके लिए कुछ व्रत तप विधि करना, ये बिजनेस का मामला है। आप हम आपके लिए 6 केला देंगे 1 नारियल देंगे आप हमको अच्छी बीवी दे दो इस प्रकार का व्यवहार होता है। लेकिन भगवान कृष्ण जो है वो आपकी हर इच्छा पूरी नहीं करते हैं, वो आपके लिए जो अच्छा है उसी को पूरा कर देते हैं, जो आपके लिए बुरा है उसको कैंसिल कर देते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण यह है कि वो हमेशा भगवान के पास ही जाता है। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो वा उदारधी तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत ही पुरुषम परम। क्या अर्थ है इसका कि अगर आपके मन में बहुत सारी काम वासनाएं हैं, बहुत इच्छाएं हैं दुनियाबद्दारी की, या आपके मन में कोई इच्छा नहीं है लेकिन केवल मोक्ष की इच्छा है, अकामो सर्व कामो वा, अकामो मतलब आपके मन में कोई इच्छा नहीं है, सर्व काम मतलब आपके मन में अनंत इच्छाएं हैं, और मोक्ष कामो मतलब आपके मन में मोक्ष की इच्छा है। ये तीनों स्थितियों में हमको केवल कृष्ण भगवान के पास ही जाना चाहिए। कारण इसका यह है कि आपकी सभी इच्छाओं के सभी स्तरों पर कृष्ण भगवान तय करेंगे आपके कल्याण के लिए क्या आवश्यक है, इसलिए आपको चिंता की आवश्यकता नहीं। आप चाहे 1000 इच्छा वह प्रकट करेंगे लेकिन कृष्ण भगवान आपके लिए जो अनुकूल होगा, आपके लिए जो अच्छा होगा, जिसमें आपका कल्याण होगा, उसी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि हम देवताओं का अपमान करना चाहिए। देवताएं भगवान के भक्त हैं, भगवान के द्वारा विशेष शक्ति उनको प्राप्त है, विशेष कार्य और विशेष सेवा उनको दिया गया है, और उनके लिए बहुत ऐश्वर्य भी दिया गया है जिसको हम वो हमको दे सकते हैं। भक्त लोग जो हैं जब भी देवताओं के मंदिर में जाते हैं उनको बड़े ही श्रद्धा से और बड़े प्रेम से दंडवत प्रणाम करते हैं भगवान के भक्त के रूप में, लेकिन उनसे कोई कामना नहीं करते, उनको आदर व्यक्त करते हैं, उनकी कुछ सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन मन में कोई इच्छा रखते नहीं कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे गाड़ी दो, बंगला दो, अच्छी बीवी दो, अच्छा पति दो, मेरा बच्चा अच्छे एग्जाम में पास हो जाए, इस प्रकार की कामनाएं हमको देवता के पास नहीं करना चाहिए। जो भी कुछ है कृष्ण भगवान के पास आकर हमको अपने आप को अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार से भूतेश्वर महादेव, चक्रेश्वर महादेव, गोपेश्वर महादेव और कामेश्वर महादेव, ये चार प्रमुख रूपों में शिवजी महाराज यहाँ पर ब्रज में विराजमान है। और कामेश्वर महादेव का ऐसा महात्म्य है कि यहाँ पर आकर आप कोई भी कामना करेंगे तो उसको वो पूर्ति कर देते हैं, और हमें इनके पास कामना प्रकट करते हुए बड़े सावधानी से और विचारपूर्वक कामना करनी चाहिए। यहाँ पर हमको पूछना हमको यह है कि हमें श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति दे दो। हमारे जीवन में कई इच्छाएं, मन का स्वभाव क्या है? मन का स्वभाव है इच्छा करना, अनुभव करना और विचार करना, थिंकिंग फीलिंग एंड विलिंग। विचार करना, इच्छा करना और अनुभव करना, ये तीन मन का स्वभाव है। तो इच्छा के विषय में अनंत इच्छाओं की लहरें मन में उठती रहती है हमेशा। जो जो वस्तु को देखते हैं, जो जो वस्तु को अनुभव करते हैं, जो जो वस्तु को सुनते हैं, उसके बारे में इच्छा प्राप्त होती है। अगर हम अमेरिका विषय में सुना तो अमेरिका जाने की इच्छा होती है, जलेबी का सुना तो जलेबी खाने की इच्छा होती है, सुंदर स्त्री को देखा तो उसकी प्राप्ति करने की इच्छा होती है, सुंदर पुरुष को देखा तो उसको पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा होती है, धन दौलत देख रहे धन दौलत चाहिए ऐसी इच्छा होती है। जो जो वस्तु को हम संपर्क करते हैं वो वस्तु हमको चाहिए, ऐसे हमारे मन में हमेशा अनंत लहरें उठती रहती है। लेकिन उसी मन के अनियंत्रित होने की वजह से हम बार बार इस दुनिया में जन्म मृत्यु के चक्र काट रहे हैं, और उससे अगर छुटकारा पाना है तो हमारे मन को हमको कृष्ण में लगाना चाहिए। ये न के न प्रकार न मन कृष्ण निवेश, किसी प्रकार से क्यों ना हो मन को कृष्ण के विचार में लगाना चाहिए। और जब मन कृष्ण के विचार में लगता है तो अपने आप ही वो कामनाओं की अशुद्धता से शुद्ध हो जाता है। इतनी मन में त्रस्त करने वाले विचार आते हैं, उन सब त्रस्त करने वाले विचारों से कृष्ण को विचार करने से वो नष्ट हो जाते हैं, मन शुद्ध हो जाता है। मन अपवित्र तब होता है जब उसके अंदर कृष्ण को छोड़कर बाकी अन्य स्वार्थी इच्छाएं उत्पन्न होती है, तो मन को दूषित माना जाता है। और जो मन जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, भगवान के विचार में लगाते हैं, भगवान के लिए ही इच्छा करते हैं, तो मन पवित्र हो जाता है। और ऐसा मन अपने इंद्रियों पर काबू करने में सफल हो जाता है, और जब इंद्रियों पर काबू पाता है मन तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, ऐसे भगवान गीता में कहते हैं। इसलिए अगर मन को सहजता से हमको अगर नियंत्रण में लाना है तो केवल सबसे श्रेष्ठ और सबसे सिंपल ऐसा एक ही तरीका है, वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए आप सब लोगों को हम विनती करते हैं कि कामेश्वर महादेव से आप प्रार्थना कीजिए कि आपका मन हमेशा कृष्ण में लगा रहे, आपके मन में हमेशा कृष्ण के लिए ही इच्छा उत्पन्न होती रहे, आपका इंद्रियां हमेशा कृष्ण की सेवा में रहे, आपका जीवन उनके चरणों में समर्पित रहे। इसलिए शिवजी महाराज से आप बिल्कुल गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करना, ये आपको वो वरदान दे सकते हैं, इनकी क्षमता है देने की। जय जय श्री राधे। ये बहुत ही पवित्र स्थान है कामय वन का, यहाँ पर जरूर आना चाहिए कामय वन में आने के बाद में, और अपना दंडवत प्रणाम ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। शिवजी महाराज बड़ी कृपा करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच।